नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, हमें विश्वास है कि हमारे इस बाइबल अध्ययन से आपको अत्यधिक लाभ मिल रहा है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये पुस्तक आपके आत्मिक जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में सम्मिलित हो और सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
मित्रों, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, हम इन दिनों व्यवस्था विवरण की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि परमेश्वर ने इसराइलियों को शुद्ध और अशुद्ध पशुओं के द्वारा आत्मिक शिक्षा प्रदान की थी और इतना ही नहीं, उसने भौतिक रीति से भी उन्हें आशीषें प्रदान की, अर्थात वे तब आशीष को प्राप्त करते हैं जब वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। इतना ही नहीं, हमने यह भी देखा कि जो उपज हमारे पास आते हैं उसका दशमांश परमेश्वर के पास देना था, अर्थात उसके मंदिरों में पहुंचाना था। चाहे पशु हो, चाहे फल हो या किसी प्रकार की कोई भी उपज क्यों न हो। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और आज हम अध्याय 15 और अध्याय 16 में से अध्ययन करेंगे और आज का हमारा विषय भी कुछ हटकर है। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम सब आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम में से हर एक के जीवन में फिर से एक बार दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। पिता परमेश्वर, इस समय हमारे हर एक श्रोता भाई बहन जो आपके वचन को सुनने के लिए अपने रेडियो को खोल करके बैठे हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप प्रत्येक की आत्मिक आंखों को, उनके कानों और हृदय को और विचारों को खोल दें, उन्हें एकाग्रतापन दें ताकि जब हम सब मिल करके एक साथ आपके जीवित वचन का अध्ययन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, विनती है कि आप हम इससे हर एक को सहायता प्रदान करें कि हम आपके जीवित वचन को समझ सकें और अपने व्यक्तिगत जीवन में उसे ग्रहण करने पाएं। जो भी देखी अनदेखी शक्तियां हैं जो हमें तकलीफ पहुंचाती है, रुकावटें पहुंचाती है, प्रभु आप उसे दूर करें। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए भी है जो दुखी हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, बीमारी और तंगी हालत में हैं। पिता परमेश्वर, उन्हें भी अपने अनुग्रह के द्वारा चंगाई प्रदान करें, उन्हें अपने आशीष प्रदान करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम अध्याय 15 और 16 से अध्ययन करेंगे। अध्याय 15 का विषय है परमेश्वर का गरीबी कार्यक्रम और अस्थाई दास। मित्रों, आजकल हम गरीबी हटाने के कार्यक्रम के बारे में बहुत सुनते हैं। मनुष्यों ने बहुत से कार्यक्रम को रचा है परंतु वे कार्य नहीं करते। परमेश्वर के पास निर्धनता के कार्यक्रम है जो कार्य करते हैं। इस अध्याय में अस्थाई दासों या गुलाम के लिए भी एक खंड है और अंततः इस अध्याय में हम पूर्ण और सिद्ध बलिदान के प्रतिरूप को पाते हैं जो मसीह है। आइए अब हम देखते हैं छुटकारे का वर्ष। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 15 अध्याय उसके एक पद में लिखा है, 7-7 वर्ष बीतने पर तुम छुटकारा दिया करना। मेरे मित्रों, प्रत्येक 7वां वर्ष छुटकारे का वर्ष होता है। उस वर्ष में एक छुटकारा दिया जाता है। तब हम आगे पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 15 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, अर्थात जिस किसी ऋण देने वाले ने अपने पड़ोसी को कुछ उधार दिया हो तो वह उसे छोड़ दे और अपने पड़ोसी व भाई से उसको बरबस न भरवा ले, क्योंकि यहोवा के नाम से इस छुटकारे का प्रचार हुआ है। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने पहले ही जता दिया था कि प्रत्येक 7वें वर्ष वह भूमि खाली रखी जाए। हम प्रत्येक 7वें वर्ष छुटकारे के बारे में पढ़ते हैं। इसराइली 7 वर्ष से अधिक कोई ऋण नहीं ले सकते थे, उस ऋण के लिए कुछ भी गिरवी नहीं रखा जा सकता था। जब सातवां वर्ष आया तो जो पैसा उधार दिया गया था और जो ऋण दिया गया है वे सभी निष्क्रिय कर दिए जाते थे। ये संपत्ति को समान रूप से तौलता था और यह देखा जाता था कि इसने प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर दिया है या नहीं। मेरे मित्रों, समाजीकरण की जैसी वकालत आज भी की जाती है वह इसको ध्यान में नहीं रखती है कि मनुष्य एक पापी है। यदि कुछ भी न कर पाने के लिए उसे कुछ मिलता है तो ये पक्का है कि वह कार्य करने नहीं जा रहा है। जैसे लोकतंत्र और पूंजीवादिता आज है, वे अत्यधिक निर्धन लोग हैं जो काम नहीं करते, परंतु हमारे अत्यधिक धनी लोग भी हैं जो कार्य नहीं करते हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर के पास इसराइलियों के लिए व्यवस्था थी जिसने अवसरों को समान किया ताकि एक गरीब व्यक्ति जो काम करके स्वयं के लिए कुछ प्राप्त करना चाहता था उसके लिए यह संभव हो सके। परमेश्वर की व्यवस्था ने अत्यधिक धनी अत्यधिक गरीब दोनों के प्रति रक्षा की। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 15 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, परदेशी मनुष्य से तू उसे बरबस भरवा सकता है, परंतु जो कुछ तेरे भाई के पास तेरा हो उसको तू बिना भरवाए छोड़ देना। मेरे मित्रों, यह नियम इसराइलियों के लिए था। प्रत्येक निर्धन व्यक्ति के 7वें वर्ष में उसका कर्ज निष्क्रिय हो जाएगा और उनके पास पुनः आरंभ करने का अवसर होगा। यदि इसराइलियों में से कोई इसे ध्यान पूर्वक देखेगा तो ध्यान दें कि क्या होगा। आज यदि कोई भी जन किसी राष्ट्र का भ्रमण करे वह निर्धन की निर्धनता और अमीर की अमीरी से प्रभावित होते हैं। यह यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, अमेरिका में बिल्कुल सत्य है। शहर के एक तरफ तो अत्यधिक निर्धनता और शहर के दूसरी ओर अत्यधिक संपन्नता है। यह मनुष्य के ही पाप का फल है। कोई भी निसंदेही किसी एक व्यक्ति पर दोष लगा सकता है। यदि मनुष्य ने इस रीति से परमेश्वर की आज्ञा मानी होती तो उनके बीच कोई भी निर्धन ना होता। मेरे मित्रों, वहां संपत्ति का संतुलन होता है क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। जब तक मनुष्य का हृदय परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक समाजीकरण का जैसा अभ्यास समाजवादी देशों में हो रहा है बहुत ही शासकीय बन जाता है जो कि काल्पनिक है। पूंजीवादिता अभी भी समाजवादिता से कई गुना अच्छा है, परंतु चाहे किसी राष्ट्र में सामाजिकता हो या पूंजीवादिता, मूल समस्या मनुष्य का हृदय है। परमेश्वर ने इसराइल को आज्ञा पालन के लिए बुलाया। यदि उन्होंने उसका आज्ञा पालन किया होता तो गरीबी अलग हो गई होती। हम सोचते हैं कि हम निर्धनता के कार्यक्रम में पैसा लगाकर निर्धनता अलग कर सकते हैं, और तब क्या होता है कि हम बहुत से घूसखोरी को देखते हैं जो शायद ही पहले कभी हमने इस राष्ट्र में देखी हो। ये एक शर्मिंदगी बन चुकी है। क्यों? उन लोगों की किस्मों की वजह से जिनके साथ हम व्यवहार करते हैं। मित्रों, यह व्यवस्था गलत नहीं है, यह तो व्यक्ति है जो गलत है। एक व्यवस्था को लागू कर छोड़ देना और दूसरे व्यवस्था को लागू करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आप व्यक्ति को नहीं बदलते कोई भी व्यवस्था काम नहीं करेगी। मेरे मित्रों, यहाँ परमेश्वर महत्वपूर्ण लोगों से व्यवहार कर रहा है। मूल समस्या मनुष्य के हृदय के साथ है। क्या होगा यदि इस राष्ट्र का धन सभी में समानांतर बांट दिया जाए तो बिल्कुल अगले 10 वर्षों में फिर से निर्धन हो जाएगा। यह ऐसा मनुष्य के हृदय में जो कुछ भी है उसकी वजह से निर्धन हो जाएगा। मेरे मित्रों, यह ऐसा मनुष्य के हृदय में जो कुछ भी है उसकी वजह से ही होता है। परमेश्वर बहुत ही स्पष्ट बताता है कि यदि उसकी व्यवस्था इस्तेमाल की गई होती अर्थात आज्ञा पालन की गई होती तो ये समस्याएं सुलझ चुकी होती। तब हम आगे देखते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 15 अध्याय उसके 6 पद में, जहां पर लिखा है, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना न पड़ेगा और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता न करने पाएंगे। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए कि ये इसराइल के संबंध में एक स्मरण योग्य कथन है। यह सच है कि बहुत से यहूदी वित्त अधिकारी संसार के महाजन बन चुके हैं। रोथस्चाइल्ड के घराने ने बहुत से राष्ट्रों की वित्त सहायता की है। तुम बहुत से राष्ट्रों को उधार दोगे, अवश्य ही पूरा हो चुका है। मेरे मित्रों, आगे हम पाते हैं कि तुम बहुत से राष्ट्रों पर राज्य करोगे, परंतु वे तुम पर राज्य न करने पाएंगे। अभी तक पूरा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसराइल आज तक परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान पाई है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 15 अध्याय उसके 7 और 8 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए न तो अपना हृदय कठोर करना और न अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसका जितना प्रयोजन हो, उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। पवित्र शास्त्र में यह स्मरणीय पद्यांश है। राष्ट्र ने कभी इस बात को नहीं माना और यहूदी लोगों ने आज तक इस आज्ञा को पूर्ण रूप से नहीं माना है। परंतु क्या आपने देखा कि पूरे संसार में इसराइल के छोटे से राष्ट्र ने यहूदी लोगों से उपहार प्राप्त किया और यही राष्ट्र सबसे अधिक उपहार अभी प्राप्त कर रहा है। मेरे मित्रों, शायद कोई सोचते होंगे कि कुछ मसीही या कुछ कलीसियाएं या कुछ संस्थाएं देने के लिए अगुवाई करती हैं, परंतु वे ऐसा नहीं करते हैं। यहूदी लोग आज इसराइल के छोटे से राष्ट्र को लाखों में मुद्रा दे रहे हैं। मेरे मित्रों, आप देखते हैं कि बहुत आरंभ में ही परमेश्वर ने उन्हें अपने भाइयों का ख्याल व देखभाल करने के बारे में सिखाया। यही सिद्धांत मसीही विश्वासियों को भी दिए गए हैं, जो अस्थाई वास्तविकता हैं और जिसे परमेश्वर एक ओर से दूसरी ओर तक ले जाते हैं। यही आज विश्वासी लोगों को भी करना है। परंतु जब अपने भाइयों की सहायता करने की बात आती है तो हम उस संघ में नहीं होते हैं। फिर भी मैं नहीं सोचता कि जो निर्देश परमेश्वर ने उन्हें दिए हैं वे उसके नजदीक भी आते हैं जो परमेश्वर उनसे उम्मीद रखता है। हम आगे देखते हैं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 15 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता न समाए कि सातवां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ न दे और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे, तो यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। मित्रों, ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी कि उन्हें अपने उत्तरदायित्व को सिद्ध नहीं करना चाहिए। वे कह सकते थे कि सातवें वर्ष किसी भी तरह से उसका भाई कर्ज मुक्त हो जाएगा, तो वे क्यों आगे बढ़ें और एक दो वर्ष उसकी सहायता क्यों करें। परमेश्वर उनसे आगे बढ़ने और उसी क्षण अपने निर्धन भाई की सहायता करने के लिए कहता है। हम व्यवस्था विवरण 15 अध्याय के 10 और 11 पद में आगे पढ़ते हैं, तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। परमेश्वर ने उनसे कहा कि यदि वे उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो उस भूमि पर कोई भी निर्धन नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर मानवीय हृदय को जानता है। इसलिए उसने कहा, धरती पर हमेशा ही निर्धन लोग होंगे। मेरे मित्रों, आपको याद है कि प्रभु यीशु ने बिल्कुल यही बात कही थी, मनुष्य के हृदय के कारण निर्धन लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। खुले तौर पर कहें तो बहुत से लोग आलसी हैं, बहुत से लोग में चाह नहीं है और वे पहल ही नहीं करते हैं। दूसरी ओर जो लोग योग्य हैं आमतौर पर निर्धनों की सहायता नहीं करते। मनुष्य के लिए ऐसा करना स्वाभाविक नहीं है। भाग्य की कमी के कारण मनुष्य के लिए इसे बांटना अलौकिक है। इसलिए वह अपने लोगों को आज्ञा देते हैं कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को हाथ खोल करके अर्थात ढीला करके जरूर दान देना। हम आगे देखते हैं कि दासों को सातवें वर्ष में छोड़ा जाना था। हम व्यवस्था विवरण 15 अध्याय उसके 13 और 14 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और जब तू उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने दे तब उसे छूछे हाथ न जाने दे, वरन अपनी भेड़ बकरियों और खलिहान और दाख मधु के कुंड में से उसको बहुतायत से देना। तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे जैसे आशीष दी हो उसी के अनुसार उसे देना। जब दास को स्वतंत्र किया जाता था तो उसे खाली हाथ नहीं भेजा जाता था। और तब हम आगे देखते हैं कि स्थाई दास अर्थात हमेशा के लिए दास होना। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय उसके 16 और 17 पद में लिखा हुआ है, और यदि वह तुझसे और तेरे घराने से प्रेम रखता और तेरे संग आनंद से रहता हो और इस कारण तुझसे कहने लगे कि मैं तेरे पास से न जाऊंगा, तो सुतारी लेकर उसका कान किवाड़ पर लगाकर छेदना। तब वह सदा तेरा दास बना रहेगा और अपनी दासी से भी ऐसा ही करना। मेरे मित्रों, हमने निर्गमन में देखा कि एक मनुष्य स्वयं को दास के रूप में बेच सकता था। यदि उसका स्वामी उसे पत्नी देता था तो उसके स्वामी की दासी थी। तो जब छुटकारे का वर्ष आता तो वह व्यक्ति आजाद होकर जा सकता था, परंतु शायद यदि वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने का चुनाव करता और अपने स्वामी का स्थायी दास बन जाता तो उसके कान में यह दर्शाने के लिए छेद कर दिया जाता था कि वह उसका स्थायी तौर पर दास बन चुका है। मेरे मित्रों, यह प्रभु यीशु मसीह की एक सुंदर तस्वीर है। हम फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 7 और 8 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने क्रूस की मृत्यु भी सहली। जबकि यीशु आजाद होकर जा सकते थे, उनके ऊपर पाप का कर्ज नहीं था, वह पापी नहीं थे, उसको सजा देने के लिए कोई दंड नहीं था, परंतु उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया और स्वयं को हमारे लिए दे दिया। बिल्कुल उसी तरह जैसे दास ने अपना कान सुतारी से छिदवा लिया और हमेशा के लिए दास बन गया। इसलिए भजन संहिता भी कहती है, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। इसे हम भजन संहिता 40 उसके 6 पद में पढ़ते हैं। और तब हम पाते हैं कि इब्रानियों की पुस्तक भजन संहिता के इसी गद्यांश को लेती है और कहती है, परंतु देह इसी तरह तैयार की गई। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 15 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 16 से अपने अध्ययन को बनाए रखेंगे। और इस अध्याय में हम तीन मुख्य पर्वों को देखेंगे जिसमें पुरुषों का शामिल होना आवश्यक था। तीन मुख्य पर्व और सभी पुरुषों का शामिल होना। इसराइल को तीन पर्व दिए गए थे, फसह का पर्व, पेंतिकोस्त का पर्व और तंबुओं का पर्व, जिसमें सभी पुरुषों को शामिल होना था। फसह का पर्व इसराइल के मिस्र से छुटकारे व उनके यहोवा के देश के रूप में स्वीकार करने की याद में मनाया जाता था। फसह एक पर्व है जिसने उस देश की नींव को डाला तथा वह परमेश्वर के साथ इसराइल के नए संबंध का जन्म है। आइए हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 16 अध्याय उसके 1 और 2 पद को पढ़ें। यहाँ पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, अबीब महीने को स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मानना, क्योंकि अबीब महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा रात को तुझे मिस्र से निकाल लाया। इसलिए जो स्थान यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने को चुन लेगा वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भेड़ बकरियों और गाय बैल फसह करके बलि करना। मित्रों, फसह को मनाए जाने की पृष्ठभूमि को देखने के लिए निर्गमन 12 अध्याय में हम देखते हैं जहां पर इसराइल की संतान मिस्र में गुलाम थी। मिस्र से मूसा को परमेश्वर ने उसके लोगों को मिस्र से निकालकर वायदे के शहर में अगुवाई करने के लिए चुना। फिरौन ने जिद्दी होकर उन्हें नहीं जाने दिया। तब परमेश्वर ने फिरौन को अपनी ताकत मिस्र पर विपत्ति डालकर दिखाई। तब उस रात्रि को जब लोगों पर आखिरी विपत्ति आनी थी, इसराइल के बच्चों को अपना विश्वास मेमने को बलि करके और उसके लहू को घर के दरवाजे पर लगाना था। लहू को देखकर मौत के दूत उस घर से चले जाएंगे जो पहलौठे को मृत्यु से बचा लेगा, क्योंकि पहलौठों की हर उस घर में मौत हो गई थी। उनके अपनों को मिलाकर फिरौन ने इसराइल के बच्चों को छोड़ दिया। परमेश्वर चाहता था कि उसके बच्चे उस अद्भुत छुटकारे को याद रखें, इसलिए उसने फसह के पर्व को मनाया। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 16 अध्याय उसके 5-8 पद में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, फसह को अपने किसी फाटक के भीतर जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे बलि न करना। जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने के लिए चुन ले, केवल वही वर्ष के उसी समय जिसमें तू मिस्र से निकला था, अर्थात सूरज डूबने पर संध्या काल को फसह का पशु बलि करना। तब उसका मांस उसी स्थान में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले भूंज कर खाना। फिर विहान को उठकर अपने अपने डेरे को लौट जाना। 6 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना और 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए महासभा हो। उस दिन किसी प्रकार का काम काज न किया जाए। मेरे मित्रों, यह फसह का पर्व था और उसे एक जगह पर मनाया जाता था जो कि यरूशलेम में था। उस समय इसराइल के सभी पुरुषों को यरूशलेम जाना अत्यंत जरूरी था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेंतिकोस्त का पर्व। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 16 अध्याय उसके 9-11 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, फिर जब तू खेत में हसुआ लगाने लगे, तब से आरंभ करके 7 अठवारे गिनना। तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छा बलि देकर 8वें नाम पर्व मानना, और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, अपने अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू और तेरे फाटकों के भीतर जो लेवीय हो और जो जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे बीच में हो, वे सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करें। यहाँ पर ध्यान दे कि उन्हें फसह के बाद 7 सप्ताहों को गिनना था, जो मिलाकर 49 दिन होते हैं, और 50वां दिन जो अगला दिन था वह सप्त का दिन था, क्योंकि 50 गिनती के लिए ग्रीक शब्द पेंटिकोस्त है। ये सप्ताहों के पर्व पेंतिकोस्त के रूप में मनाया जाता है। ये कटने के पर्व या दिन के पहले फल के रूप में भी मनाया जाता है। इसे कटने के पहले या शुरुआत के फलों से मनाया जाता है। और तब हम आगे देखते हैं झोपड़ियों का पर्व। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय उसके 13 पद में लिखा हुआ है, तू जब अपने खलिहान और दाख मधु के कुंड में से सब कुछ इकट्ठा कर चुके, तब झोपड़ियों नाम पर्व 7 दिन मानते रहना। यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि यह दूसरा खुशी का पर्व था। वह 7 दिन तक रहता था और परमेश्वर के द्वारा चुने हुए स्थान यरूशलेम में ही होना था। हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 16 अध्याय के 16-17 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, वर्ष में 3 बार अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व और 8वारों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाएं, और देखो छुछे हाथ यहोवा के सामने कोई न जाए। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करें। यह 3 पर्व हैं जो यरूशलेम में मनाए जाते थे। इसमें सारे पुरुषों को शामिल होना अर्थात उपस्थित होना आवश्यक था। इन पर्वों को रखने के लिए उन्हें साल में 3 बार यरूशलेम की यात्रा करनी पड़ती थी। यह समय आनंद मनाने का होता था। मित्रों ध्यान दें, उन्हें परमेश्वर के पास आनंद के साथ ही आना पड़ता था। आगे हम देखते हैं फाटक में न्याय। मित्रों यह अध्याय न्यायियों के लिए आदेश दिए जाने के साथ समाप्त होता है। आइए हम पढ़ें व्यवस्था विवरण की पुस्तक 16 अध्याय उसके 18 पद, जहां पर लिखा हुआ है, तू अपने एक एक गोत्र में से अपने सब फाटकों के भीतर जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है न्यायी और सरदार नियुक्त कर लेना, जो लोगों का न्याय धर्म से किया करें। मेरे मित्रों, उन दिनों में न्यायालय कोई इमारत नहीं थी जो शहर के केंद्र में बनी हो। शहर के बीच होने की बजाय वह शहर पनाह के मुख्य द्वार पर था। इसका कारण यह था कि यह वह जगह थी जहां से नागरिक शहर में आया और जाया करते थे। यह एक जमा होने का स्थान था, जैसे कि शहरों में जमा होने के लिए मैदान होते हैं, जैसा कि वह मनुष्य के हृदय को जानता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर न्याय को बिगाड़ने, पश्चाताप करने और घूस लेने के विरोध में चेतावनी देता है। आइए हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 16 अध्याय उसके 21 और 22 पद में। यहाँ पर लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की जो वेदी बनाएगा उसके पास किसी प्रकार की लकड़ी की बनी हुई अशेरा का स्थापन न करना और न कोई लाठ खड़ी करना, क्योंकि उससे तेरा परमेश्वर यहोवा घृणा करता है। मेरे मित्रों, उस दिन का एक उपासना उस मूर्ति पूजा और पापमय आराधना के साथ जुड़ा हुआ था और यही कारण था कि उन्हें उपवन बनाने की आज्ञा नहीं थी, अर्थात वेदी बनाने की आज्ञा नहीं थी, और उन स्थानों के बीच में ही मूर्तियों और अन्य जाति के देवताओं को रचा जाता था। आप देख सकते हैं कि यह यूरोप के कई क्षेत्रों में आराधना के बहुत करीब हैं। अन्य जाति के लोग उसमें इस प्रकार के कामों को करने के लिए जाते हैं और परमेश्वर अपने लोगों को इस प्रकार के कामों से बचने के लिए चेतावनी देते हैं। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर मुझे और आपको भी बचाना चाहते हैं ताकि हम उसके निकटता में रहकर उसके उन महान आशीषों को प्राप्त कर सकें जो परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहते हैं। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही आत्मिक आशीषें प्राप्त की है। प्रभु के वचनों पर बने रहें, उससे प्रेम करें और दूसरों की सहायता करें ताकि परमेश्वर के आशीषें हमारे जीवन में और अधिकाई से आ सके। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। Seeking